मैं सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ,
जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है।
मैं उसके एकमात्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ,
जो पवित्र आत्मा से कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। उसने पोंतियुस पिलातुस के हाथों दुख सहा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया।
वो अधोलोक में उतरा,
तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा,
वो स्वर्ग में चढ़ गया
और वह सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है,
जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया में, पवित्र संतों की संगति में, पापों की क्षमा में, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
प्रत्येक मसीह परंपरा में किसी न किसी विशेष बात पर बल दिया जाता है। कुछ परंपराएं आराधना पर, कुछ धर्म शिक्षा और सत्य पर, कुछ सामाजिक सहभागिता और भले कार्यों पर, कुछ विश्वासियों की एकता पर और कुछ उत्साहपूर्ण मसीह जीवन पर बल देती हैं। ये सब अच्छी बातें हैं जिन पर बल दिया जाता है, परंतु इन सब के नीचे एक वास्तविकता पाई जाती है जिसे प्रायः अनेक मसीहों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। जो हमारे इन सब अच्छी बातों को जोड़ती है वही है जिसमें से ये सब अच्छी बातें मसीह के देह में बहती है। वो वही व्यक्तित्व है जो मसीह विश्वास के इन और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करता है। वो सदैव हमारे साथ है जो हमें उद्धार प्रदान करने के लिए परिश्रम करता रहता है। हमारे भीतर पाया जाने वाला जीवन वही है। वो कोई और नहीं परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा है।
प्रेरितों के विश्वास कथन की हमारे श्रृंखला में यह हमारा चौथा अध्याय है और हमने इस अध्याय का शीर्षक पवित्र आत्मा रखा है, क्योंकि हम विश्वास कथन के उस विश्वास सूत्र पर ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व में विश्वास की पुष्टि करता है। प्रेरितों का विश्वास कथन एक पंक्ति में पवित्र आत्मा के विषय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करता है, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। विश्वास कथन में उसके विषय में अन्य वचन यही है कि मरियम के गर्भ में यीशु का गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, विश्वास कथन पवित्र आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत ही कम बात करता है, परंतु ये उसके बारे में महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर करता है जो संपूर्ण इतिहास में विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। पवित्र आत्मा के विषय में हमारा विचार विमर्श तीन भागों में बांटा जाएगा। पहला, हम उसके ईश्वरत्व परमेश्वरत्व में उसकी पूर्ण सहभागिता के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम उसके याजक पद को देखेंगे, ये ध्यान देते हुए कि पवित्र आत्मा एक सच्चा व्यक्तित्व है, ना कि मात्र एक ईश्वरीय शक्ति। और तीसरा, हम उस कार्य पर ध्यान देंगे जो उसने अतीत में किया है और जो वो आज भी करना जारी रखता है। आइए हम यीशु के ईश्वरत्व के साथ प्रारंभ करें। पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को जांचने के लिए हम दो दिशाओं में देखेंगे। एक ओर हम देखेंगे कि प्रेरितों का विश्वास कथन आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है, और दूसरी ओर हम विश्वास कथन की शिक्षा के बाइबल आधार पर ध्यान देंगे। आइए ये देखने के द्वारा आरंभ करें कि किस प्रकार प्रेरितों का विश्वास कथन पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है।
जब पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में बात की जाती है तो एक प्रश्न जो लोग प्राय पूछते हैं वो ये है कि क्या कलीसिया ने सदैव पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि या उसका अंगीकार किया है या नहीं। और निश्चित रूप से हमारे पास उपलब्ध ऐतिहासिक प्रलेख में पाया जाता है कि नाइसिन विश्वास कथन और निसिया की परिषद ने आत्मा के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया था, और इसलिए एक और परिषद बुलाई गई थी, और वो मैं सोचता हूं चालसीदोन की परिषद थी, जिसमें चालसीदोन की परिषद ने पुष्टि की कि पवित्र आत्मा की आराधना पुत्र के साथ पूर्ण ईश्वरीय रूप में की जानी चाहिए। इसी कारण कुछ लोग ये कहते हैं कलीसिया ने सदैव पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को नहीं माना है। मैं सोचता हूं कि यह गलत है। परिषदों का आयोजन कभी भी नई धर्म शिक्षाओं की रचना करने के लिए नहीं किया गया था। परिषदों का आयोजन सदैव झूठी शिक्षाओं के समक्ष कलीसिया की ऐतिहासिक और पारंपरिक शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए जाता था, और इसलिए आप कह सकते हैं कि परिषदों की घोषणाओं के कारण हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के बहुत ही अच्छा कारण है कि प्रेरितों के समय से लेकर प्रेरितीय अगुओं और कलीसिया के आरंभिक धर्म विज्ञानियों तक हम पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व की शिक्षा को देख सकते हैं।
आरंभ से ही हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रेरितों का विश्वास कथन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय है, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से कम दो प्रकार से आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है। पहला, इसकी त्रियक्या संरचना पवित्र आत्मा को महत्वपूर्ण रूपों में पिता और पुत्र के समान बनाती है, और दूसरा, ईश्वर के जन्म के विषय में विश्वास कथन का वर्णन दर्शाता है कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय है। आइए हम विश्वास कथन की संरचना के साथ आरंभ करके इन दोनों विषयों पर ध्यान दें। आपको याद होगा कि एक पिछले अध्याय में जब हमने परमेश्वर की धर्म शिक्षा के दृष्टिकोण से विश्वास कथन का अध्ययन किया था, तो हमने उल्लेख किया था कि प्रेरितों के विश्वास कथन को तीन मुख्य भागों से बना हुआ देख सकते हैं, और प्रत्येक भाग मैं विश्वास करता हूं के साथ प्रारंभ होता है। पहला भाग पिता परमेश्वर में विश्वास करने के विषय में बात करता है। दूसरा भाग यीशु मसीह, उसके पुत्र और हमारे प्रभु में विश्वास करने के बारे में है, और तीसरा भाग पवित्र आत्मा में विश्वास को दर्शाता है और उसकी सक्रिय सेवकाओं की सूची प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार हमने पिछले अध्याय में देखा, प्रेरितों का विश्वास कथन समय दर समय विकसित हुआ है, और इसके पुराने प्रारूप बपतिस्मा से संबंधित स्थानीय विश्वास कथन थे। इन कुछ प्रारंभिक विश्वास कथनों में मैं विश्वास करता हूँ जैसे शब्द यीशु के विषय में पाए जाने वाले सूत्रों से पहले आते थे, परंतु अन्य प्रारूपों में केवल और शब्द पाया जाता था, जैसे कि विश्वास कथन का वो प्रारूप जिसे 700 ईस्वी में प्रमाणित किया गया था, परंतु उनके विशिष्ट शब्द प्रयोग के बावजूद उनका विचार एक समान ही था। विश्वास कथन को परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों के अनुसार विभाजित किया गया था, और इस विभाजन को कलीसिया के द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है। ये त्रियक्या विधि इस विश्वास को अभिव्यक्त करती है कि मात्र एक ही परमेश्वर है और कि उसका अस्तित्व तीन व्यक्तित्वों में है, जिसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्वों में जाना जाता है। प्रारंभिक कलीसिया के अगुए फादर हिप्पोलिटस, जिसका जीवन काल 170 से 236 ईस्वी तक का था, ने स्पष्ट किया कि उसके समय में प्रयोग किए जाने वाले बपतिस्मा संबंधी विश्वास कथन में त्रियक्या संरचना बहुत ही स्पष्ट पाई जाती थी। ये विश्वास कथन शायद एक स्थानीय विश्वास कथन के रूप में आरंभ हुआ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह काफी प्रसिद्ध हो गया था। इसकी भाषा आधुनिक प्रेरितों के विश्वास कथन से काफी मिलती जुलती है, और बपतिस्मा संबंधी संस्कारों में इसका प्रयोग इसके दृढ़ त्रियक्या महत्व को दर्शाता है। हिप्पोलिटस ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति को तीन बार पानी में डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता था। प्रत्येक डुबकी पर बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को त्रियक्ता के किसी एक व्यक्ति से संबंधित बपतिस्मा के विश्वास कथन के भाग की पुष्टि करनी होती थी। पहले वो व्यक्ति पिता से संबंधित विश्वास सूत्रों में विश्वास जाहिर करता था, फिर उसे डुबोया जाता था, फिर पुत्र से संबंधित विश्वास सूत्रों की पुष्टि की जाती थी, और तब दूसरी बार डुबोया जाता था, और अंत में पवित्र आत्मा से संबंधित विश्वास सूत्रों की पुष्टि और फिर तीसरी एवं अंतिम बार डुबोया जाना। प्रारंभिक कलीसिया में इन और इन जैसी अन्य क्रियाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि विश्वास कथन की संरचना जानबूझकर त्रियक्ता के प्रत्येक व्यक्तित्व के ईश्वरत्व पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। दूसरा तरीका जिसके द्वारा प्रेरितों का विश्वास कथन पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है, वो है मरियम द्वारा ईशो का गर्भधारण। प्रेरितों का विश्वास कथन कहता है कि ईशो मसीह परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। ये कथन स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं करता कि पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय है, परंतु ये इस विश्वास को बलपूर्वक दर्शाता है। ईशु के पैदा होने के बारे में बोलते हुए विश्वास कथन लुका 1:35 की ओर संकेत करता है, जहां स्वर्गदूत मरियम से ये वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस पद में पवित्र आत्मा को परम प्रधान की सामर्थ्य के समान दर्शाया गया है, जैसा कि हम इसी अध्याय में बाद में देखेंगे कि केवल परमेश्वर में ही परम प्रधान की सामर्थ्य हो सकती है। अतः पवित्र आत्मा के कार्य के उदाहरण के रूप में इस पद की ओर संकेत करते हुए प्रेरितों का विश्वास कथन आत्मा के पूर्ण ईश्वरत्व की पुष्टि करता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि इब्रानियों 10:5-7 में की गई है, जो कहता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बालियों और पाप बालियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यहां हमें बताया गया है कि यीशु के मानव शरीर की रचना करने का कार्य परमेश्वर का ही था। इस प्रकार के पदों के प्रकाश में ये कहना सुरक्षित होगा कि जब प्रेरितों का विश्वास कथन यीशु के जन्म को पवित्र आत्मा का कार्य दर्शाता है, तो ये आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि ही करना चाहता है। अब जब हमने देख लिया है कि किस प्रकार प्रेरितों का विश्वास कथन पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व में विश्वास व्यक्त करता है, तो आइए हम जो ये कहता है उसके बाइबल पर आधार को देखें।
इस बात को पहचानना बड़े महत्व की बात है कि जिस विश्वास की हम पुष्टि करते हैं उसकी पुष्टि सदियों से निरंतर होती आ रही है। ये एक कारण है कि कैसे पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व के बारे में प्रेरितों के विश्वास कथन की शिक्षा को समझना सहायक है। फिर भी हमें सबसे अधिक साहस पवित्र शास्त्र से ही मिलता है। हम विश्वास कथन को पवित्र शास्त्र के सारांश के रूप में समझते हैं, न कि उसके प्रतिस्थापन के रूप में। इसी कारण हमारे लिए इस बात का निश्चय कर लेना सदैव आवश्यक है कि जो विश्वास कथन कहता है वो बाइबल पर आधारित है। मैं सोचता हूं कि हम उन चार भावों को देखते हैं जिनमें पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व की पुष्टि करती है। पहला, कुछ प्रलेखों में पवित्र आत्मा को परमेश्वर के साथ अदल बदल कर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ऐसी कुछ विशेषताएं जो केवल परमेश्वर में हो सकती हैं, वे पवित्र आत्मा में दर्शाई गई हैं। तीसरा, पवित्र आत्मा उन कार्यों को भी कर सकता है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। चौथा, पवित्र आत्मा उस एकमात्र नाम में शामिल किया जाता है मत्ती 28 जिसमें मसीहों को बपतिस्मा दिया जाता है।
पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व पर विश्वास करने के लिए बाइबल का आधार कई रूपों में दर्शाया जा सकता है। हम उसे संबोधित किए गए नामों, उसमें पाई जाने वाली विशेषताओं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और त्रिएक्या विधियों जो उसका उल्लेख करती हैं पर ध्यान देंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले नामों से प्रारंभ करें। बाइबल में पवित्र आत्मा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इनमें से कुछ नाम बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से उसके ईश्वरत्व को दर्शाते हैं, वहीं अन्य नाम उसके ईश्वरत्व को स्पष्टता से दर्शाते हैं। शायद वो नाम जो सबसे अप्रत्यक्ष रूप से उसके ईश्वरत्व को दर्शाता है वो नाम है पवित्र आत्मा। शब्द पवित्र का प्रयोग सृष्टि के उन पहलुओं के लिए किया जा सकता है जो किसी भी तरह से ईश्वरीय नहीं है। शब्द पवित्र सामान्यतः उन बातों को दर्शाता है जो उन जैसी अन्य बातों से भिन्न होती है, क्योंकि वे किसी न किसी तरह से परमेश्वर के लिए विशेष होती हैं। इसलिए शब्द पवित्र अपने आप में नहीं दर्शाता कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय है। हम इसे दर्जनों अनुच्छेदों में देख सकते हैं, जैसे दूसरा राजा अध्याय 19 पद 22, यशाया 30 11 से 15 और होशे 11 9 से 12। और अन्य अनुच्छेद भी हैं जो परमेश्वर को पवित्र आत्मा के नाम से पुकारते प्रतीत होते हैं, जैसे कि यशाया 63 10 से 11। हम इस प्रकार के नामकरण को प्राचीन परंतु प्रेरणा रहित यहूदी साहित्य में पाते हैं, जैसे बुद्धि की पुस्तक के अध्याय 9 के पद 17 में। पुराने नियम की इस पृष्ठभूमि में नाम पवित्र आत्मा में ईश्वरत्व के आशय को देखना उचित है। इन अप्रत्यक्ष नामों को मन में रखकर आइए उन कुछ नामों को देखें जो पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को इस प्रकार दर्शाते हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के बीच में पाए जाते हैं। इन नामों में प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त यीशु का आत्मा, मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा और तुम्हारे पिता का आत्मा, उसके पुत्र का आत्मा एवं उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया। ये सब नाम ये दर्शाते हुए बताते हैं कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा से उसी प्रकार संयोजित है जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी आत्मा से संयोजित है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 2:11 में इस संबंध को ये कहते हुए प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हमारी आत्माएं हमारे मनुष्य होने का एक हिस्सा हैं, और उनके बारे में कुछ भी अमानवीय नहीं है। वे पूर्ण रूप से मानवीय है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी पूर्ण रूप से ईश्वरीय है, और यही उसे पिता का मन जानने के योग्य बनाता है। अतः मसीहियों के समक्ष पिता के मन को प्रकट करने के अपने कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा स्वयं को परमेश्वर के रूप में दर्शाता है। अंत में ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो बहुत ही स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप में पवित्र आत्मा को परमेश्वर नाम के द्वारा दर्शाते हैं। प्रेरितों के काम 5:3-4 में हनन्या को कहे गए पत्रस के शब्दों को सुने। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ राख छोड़े? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इस अनुच्छेद में पत्रस ने पहले कहा था कि हनन्या ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और फिर पत्रस ने स्पष्ट किया कि उसका क्या अर्थ था जब उसने कहा कि हनन्या ने परमेश्वर से झूठ बोला है। यहां प्रेरित पत्रस ने स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा। अतः जब हम उन नामों को देखते हैं जिनके द्वारा पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा को संबोधित किया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि उनमें से अधिकांश अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूपों में उसके ईश्वरत्व को दर्शाते हैं। अन्य तरीका जिसके द्वारा बाइबल पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को दर्शाता है वो है उसके साथ ईश्वरीय विशेषताओं को दर्शाना। मसीही धर्म विज्ञानियों ने परमेश्वर के दो भिन्न प्रकारों के चरित्र होने के बारे में पारंपरिक रूप से बात की है। वे हैं सूचनीय चरित्र एवं अशोचनीय चरित्र। एक और तो उसमें शोचनीय चरित्र हैं जिन्हें उसके कुछ प्राणियों के साथ सूचित या साझा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर में विवेक या तर्क का चरित्र पाया जाता है जिसे वो मनुष्यों को बताता व उनके साथ साझा करता है। नश्वर प्राणियों के रूप में मनुष्य परमेश्वर के तर्क या विवेक को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, परंतु फिर भी हमारे भीतर विवेकपूर्ण या तर्कपूर्ण रूप में सोचने की क्षमता है। निसंदेह इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ईश्वरीय हैं। ये प्रमाणित करता है कि हमें एक विवेकपूर्ण परमेश्वर के द्वारा रचा गया है जिसने विवेक की अपने चरित्र को काफी मात्रा में हमें प्रदान किया है। हमारा विवेक उसी के विवेक से निकलता है। हम विवेक के उसी के चरित्र को दर्शाते हैं क्योंकि हम उसी के द्वारा रचे गए प्राणी हैं। परमेश्वर का अन्य सोचनीय चरित्र उसका प्रेम है, और पवित्र शास्त्र अनेक स्थानों पर सिखाता है कि दूसरे लोगों के लिए हमारा प्रेम और परमेश्वर के लिए भी सीधे परमेश्वर की प्रेम के चरित्र से निकलता है। हम इसे गलातियों 5:22, इफिसियों 5:1, दूसरा तिमोथियस 1:7 और पहला यूहन्ना 4:7-21 जैसे स्थानों में देखते हैं। परंतु परमेश्वर में अशोचनीय चरित्र भी पाए जाते हैं, वे चरित्र जो स्वभाव से ही उसके द्वारा रचे गए प्राणियों के साथ बांटे नहीं जा सकते। परमेश्वर के सबसे जाने माने अशोचनीय चरित्र ये हैं: सर्वज्ञता, जो उसकी कुशग्रता, ज्ञान और बुद्धि हैं, उसकी सर्व सामर्थ्य, जो कि उसकी अनश्वर शक्ति है, उसकी सर्वव्यापकता, जो एक ही समय में सब स्थानों पर पाई जाने वाली उसकी उपस्थिति है, और उसकी अनंतता, जो कि उसका शाश्वत और अटूट स्व अस्तित्व है। चूंकि परमेश्वर के अशोचनीय चरित्र केवल उसी में पाए जा सकते हैं, इसलिए हम ये दिखाकर कि उसमें ये सब पाए जाते हैं साबित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और जब हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में उसमें ये सब पाए जाते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा की सर्वज्ञता पर ध्यान दें। पवित्र शास्त्र कहता है कि आत्मा पूर्ण रूप से परमेश्वर के मन को जानता है। हम इस विचार को इफिसियों 1:17 और पहला कुरिन्थियों 2:10-11 में पाते हैं। निसंदेह परमेश्वर का मन अनश्वर है, और उसे जानने के लिए वैसे ही एक अनश्वर मन की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के सर्वज्ञ मन को जानने की पवित्र आत्मा की योग्यता के द्वारा स्वयं पवित्र आत्मा सर्वज्ञ होने के रूप में प्रमाणित हो जाता है, और क्योंकि वो सर्वज्ञ है तो वो अवश्य ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा भी परमेश्वर के रूप में प्रमाणित होता है। उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य है। पवित्र शास्त्र में अनेक अनुच्छेद पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पहला शमूएल 10:6, रोमियो 15:19, पहला कुरिन्थियों 12:11 और पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। उत्पत्ति 1:1-3 में पवित्र आत्मा के परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जोड़े जाने पर ध्यान दें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडाउल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, पुराने नियम में परमेश्वर के उल्लेख में पूर्ण त्रियकता को समझा जाता था, परंतु भाषा और संदर्भ के अनुसार किसी एक विशेष व्यक्तित्व पर दिए गए महत्व को देखना भी उचित है। इस विषय में महत्व परमेश्वर के आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर है। अतः ज्योति या प्रकाश की रचना करने का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था। यही सब बातें उन सब के लिए भी सत्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस अध्याय में रचा, परंतु पवित्र आत्मा में ऐसी सर्व सामर्थ्य होने, शून्य में से सृष्टि की रचना करने के लिए उसे पूर्ण ईश्वरीय होना आवश्यक था। अन्य असूचनीय चरित्र जो पवित्र आत्मा में पाया जाता है वह है सर्वव्यापकता। भजन 139:7-10 जैसे अनुच्छेद सिखाते हैं कि आत्मा सृष्टि के प्रत्येक भाग में उपस्थित है, आकाश की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराई तक। और पवित्र आत्मा में अनंतता का चरित्र भी पाया जाता है। इब्रानियों 9:14 पवित्र आत्मा को अनंत आत्मा कहता है, अर्थात उसका अस्तित्व सदैव से रहा है और सदैव अस्तित्व में रहेगा। इन और इनके जैसे अन्य असूचनीय चरित्रों के माध्यम से बाइबल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व के लिए पवित्र शास्त्र में तीसरा प्रमाण वो कार्य है जो वो करता है। हम पवित्र आत्मा के कार्य की जांच और भी गहराई से इस अध्याय के बाद में करेंगे। इस समय हम उसके कुछ कार्यों को सरसरी नजर से देखेंगे, ये जानने के लिए कि किस प्रकार वे उसके ईश्वरत्व को प्रदर्शित करते हैं।
इस बात को प्रमाणित करने का एक भाग पवित्र शास्त्र में उसके कार्यों को देखना है। परमेश्वर का आत्मा वो है जो हमें मसीह से जोड़ता है, नया जीवन प्रदान करता है, पुनरुत्थान लेकर आता है, सृष्टि की रचना में सम्मिलित होता है। ये सब कार्य परमेश्वर के कार्यों से कम नहीं है, उन्हें मनुष्य के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, स्वर्गदूतों या किसी भी रचित वस्तु के साथ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे वही है जो परमेश्वर स्वयं करता है। उस आधार पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्यों को करता है, और इसलिए वो केवल व्यक्तित्व ही नहीं ईश्वरीय भी है।
पवित्र आत्मा ऐसे अनेक कार्य करता है जिन्हें बाइबल दर्शाती है कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और वे ईश्वरीय सामर्थ्य एवं चरित्रों को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो हमारी आत्माओं को संजीवित करता है तो नए जीवन की रचना करता है, जिसे हम रोमियो 8:11 में पढ़ सकते हैं। पिता के पास हम उसी के द्वारा पहुंच सकते हैं जो हमें इफिसियों 2:18 में सिखाया जाता है। वो हमें उद्धार प्रदान करता है जो हम रोमियो 5:5-8 में देख सकते हैं। नबियों के चमत्कारों के पीछे उसी की सामर्थ्य होती है, और हमारे प्रभु यीशु के चमत्कारों में भी, जैसा हम रोमियो 15:4-19 जैसे अध्यायों में देख सकते हैं। यद्यपि पवित्र आत्मा के ईश्वरीय कार्यों की सूची लगभग अनंत है, तो आइए इसे स्पष्ट करने के लिए हम हमारे ध्यान को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की ओर लगाएं। पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र के लिखे जाने को प्रेरित किया है, जो कि परमेश्वर का वचन है। और इस बात को पहचानने के द्वारा कि पवित्र आत्मा का वचन ही परमेश्वर का वचन है, हम मान लेते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हम इस विचार को मत्ती 10:20, यूहन्ना 3:34, प्रेरितों के काम 1:16 एवं 4:31 और इफिसियों 6:17 में पाते हैं। सिर्फ एक उदाहरण के रूप में दूसरा पत्रस 1:20-21 में पत्रस के शब्दों को सुने। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस अनुच्छेद में पत्रस ने सिखाया कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर बोलना परमेश्वर की ओर से बोलना है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यह परमेश्वर, विशेषकर परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित और बोला गया है। अन्य उदाहरण के रूप में परामर्शदाता या सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का कार्य दर्शाता है कि वह ईश्वरीय है। यूहन्ना अध्याय 14 से 16 में यीशु ने पवित्र आत्मा का उल्लेख सहायक के रूप में किया है, जो सत्य को प्रकट करना, पापी संसार को दोषी ठहराना और यीशु की साक्षी देना जैसे कार्य करता है। शुरू में शायद यह अटपटा लगे, यह सेवकाई पवित्र आत्मा को स्वयं यीशु की संसार में तात्कालिक उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण बनाती है। जिस प्रकार यूहन्ना 16:7 में यीशु ने कहा, तब भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा।
एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचे, स्वयं यीशु के अनुसार कलीसिया यीशु की तत्कालिक दैहिक उपस्थिति की अपेक्षा पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अधिक सहज अनुभव करेगी, परंतु एक रचित नस्वर प्राणी मसीह की संसार की उपस्थिति की आशीषों से बढ़कर नहीं हो सकता था। नहीं, पवित्र आत्मा के लिए पुत्र परमेश्वर की अपेक्षा हमारे लिए अधिक लाभकारी होने के लिए आत्मा को परमेश्वर होना अवश्य है।
पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को स्थापित करने में पवित्र शास्त्र का चौथा तरीका त्रियेक्या विधियां हैं, जिसमें पिता और पुत्र के साथ उसका नाम भी शामिल होता है। त्रियेक्या विधि पवित्र शास्त्र का वो अनुच्छेद है जो त्रियेकता के तीनों व्यक्तित्वों का उल्लेख स्पष्ट रूप से समान आधार पर करता है, उनमें परस्पर सहयोग को दर्शाते हुए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का समान सहभागियों के रूप में उल्लेख करने के द्वारा बाइबल दर्शाती है कि पवित्र आत्मा उतना ही ईश्वरीय है जितने पिता और पुत्र। हम इन विधियों को रोमियो 15:30, पहला कुरिन्थियों 12:4-6, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13-14 एवं कई अन्य स्थानों में पा सकते हैं। आइए इन विधियों के केवल दो उदाहरणों को देखें। पहला उदाहरण मत्ती 28:19 में पाया जाता है, जहां यीशु ने ये आज्ञा दी, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस विधि में यीशु ने दर्शाया कि बपतिस्मा त्रियेकता के तीनों व्यक्तित्वों के नाम या अधिकार से दिया जाए। ये आज्ञा परमेश्वर के व्यक्तित्वों को दिए जाने वाले सम्मान में कोई अंतर नहीं करती। इसकी अपेक्षा वो तीनों को समान रूप से प्रस्तुत करती है। दूसरा स्पष्ट उदाहरण दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13:14 में प्रकट होता है, जहां पौलुस ने इन शब्दों को लिखा था, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। अपनी पत्री के अंतिम आशीष वचनों में पौलुस ने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, पिता जिसे वह सामान्यतः परमेश्वर कहता है, और पवित्र आत्मा का उल्लेख एक साथ किया। ऐसा करने में उसने तीनों व्यक्तित्वों को उद्धार की आशीषों को प्रदान करने में समान रूपों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की विधियां दर्शाती हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व में एक समान व्यक्तित्व है। वे दर्शाती हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उन सब विषयों में एक समान है, जिसमें मूलभूत ईश्वरीय चरित्र और कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे पापियों को अनुग्रह और उद्धार प्रदान करना और परमेश्वर के रूप में सम्मान और आराधना प्राप्त करना।
त्रिएकता की मसीह शिक्षा सिखाती है कि एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व के रूप में अस्तित्व की एकता के रूप में पाया जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसलिए ये उचित है कि हम न केवल उससे प्रार्थना करें बल्कि परमेश्वर के समान उसे आदर भी दें।
अब जब हमने पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व पर चर्चा कर ली है, तो अब हम हमारे दूसरे शीर्षक उसके व्यक्तित्व की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं। इस भाग में हम इस तथ्य की ओर देखेंगे कि हमें पवित्र आत्मा से मात्र एक ईश्वरीय शक्ति या सामर्थ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे व्यक्तित्व के रूप में व्यवहार करना जरूरी है।
कलीसिया की संपूर्ण इतिहास में अनेक समूह ने पवित्र आत्मा के इस प्रकार के व्यक्तित्व का इनकार किया है, जिसमें भिन्न आत्म चेतना और ईश्वरीय व्यक्तिगत चरित्र पाए जाते हैं। कुछ ने विश्वास किया है कि वो अन्य रूप में पिता ही है। अन्य ने यह तर्क दिया है कि नाम पवित्र आत्मा केवल एक नाम है जिसके द्वारा प्राचीन लेखक परमेश्वर की सामर्थ्य का वर्णन करते थे। परंतु प्रेरितों के विश्वास कथन की संरचना में हम देख सकते हैं कि ये बाइबल के उस दावे की पुष्टि करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व में एक वास्तविक और भिन्न व्यक्तित्व है। ये वचन की स्पष्ट शिक्षा है और सदियों से मसीह कलीसिया की प्रत्येक शाखा का यही दावा रहा है। पवित्र आत्मा का वर्णन नए नियम में व्यक्तित्व से संबंधित शब्दों में किया गया है, ना कि अव्यक्तिक सामर्थ्य के रूप में। और शेष कलीसिया ने उस साक्षी के चारों ओर एकत्रित होकर कहा है कि हम भी इसी बात पर भरोसा करते हैं। यह सत्य है कि इस पर गहन तर्क वितर्क होने के पश्चात बाद वाले विश्वास कथन के शब्दों में इसे ढालने में 300 से 400 वर्ष लगे। परंतु जब कैसरिया का बासिल इस पर चौथी सदी में चर्चा करता है, तो वो नई धर्म शिक्षा की रचना नहीं कर रहा है। वो केवल उस बात को संरचना प्रदान कर रहा है जिस पर लोग 300 वर्षों से विश्वास करते आ रहे हैं।
प्रारंभ से हमें यह स्वीकार कर लेने की जरूरत है कि प्रेरितों का विश्वास कथन इन विषयों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। परंतु जब हम मसीहत की पहली कुछ सदियों में पवित्र आत्मा के विषय में महत्वपूर्ण धर्म विज्ञानीय तर्क वितर्कों पर ध्यान देते हैं, तो हम देख सकते हैं त्रिएकता के एक सदस्य के रूप में पवित्र आत्मा की विश्वास कथन में पाई जाने वाली पुष्टि उसके व्यक्तित्व की भी पुष्टि है। शेष बाइबल आधारित मसीहत के साथ प्रेरितों का विश्वास कथन भी परमेश्वर के आत्मा के मात्र शक्ति या ईश्वरीय सामर्थ्य में निर्व्यक्तिकरण को ठुकरा देता है। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व की विश्वास कथन की पुष्टि के बाइबल आधार पर हमारी चर्चा तीन भागों में विभाजित होगी। पहला, हम उन व्यक्तिगत चरित्रों को देखेंगे जो पवित्र आत्मा में पाए जाते हैं। दूसरा, हम पिता और पुत्र से उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देंगे। और तीसरा, हम त्रिएकता के अन्य सदस्यों के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध का वर्णन करेंगे। हम उन चरित्रों के साथ प्रारंभ करेंगे जो प्रमाणित करते हैं कि पवित्र आत्मा एक पूर्ण व्यक्तित्व है। जब हम पवित्र आत्मा के व्यक्तिगत चरित्रों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मन में वे विशेषताएं हैं जो उसमें निहित मनुष्यों में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। वे बातें जो उसमें तब ही पाई जा सकती हैं जब वो मात्र अव्यक्तिक शक्ति ही नहीं बल्कि वास्तविक व्यक्ति हो।
मैं इसे नए नियम में बहुत ही उपयोगी समझता हूँ कि नया नियम ना केवल पिता परमेश्वर के नामों, शीर्षकों, चरित्र और उसके कार्यों के विषय में बात करता है, बल्कि ये पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में भी यही बात करता है। दूसरे शब्दों में, वे सभी व्यक्तिगत विशेषताएं जो बाइबल में पिता परमेश्वर के बारे में कही गई हैं, वही विशिष्टताएं नए नियम में पवित्र आत्मा के विषय में भी कही गई हैं, और ये एक बार फिर हमें दर्शाता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, शक्ति या बल नहीं।
पवित्र आत्मा में इतने अधिक व्यक्तिगत चरित्र पाए जाते हैं कि इस अध्याय में हम उनकी सूची नहीं बना सकते, इसलिए हम उसके व्यक्तित्व को दर्शाने में चार उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हम ये कहते हुए आरंभ करेंगे कि पवित्र आत्मा में इच्छा पाया जाता है। ये वो क्षमता है जिसका प्रयोग वह योजना बनाने, अभिलाषा रखने और चयन करने में करता है। स्पष्टता, जो भी प्राणी ये कार्य कर सकता है वो मात्र शक्ति या बल नहीं हो सकता। उसकी इच्छा के एक उदाहरण के रूप में पहला कुरिन्थियों 12:11 पर ध्यान दें, जहां पौलुस आत्मिक वरदानों के वितरण के बारे में बात करता है। सुने पौलुस ने क्या लिखा। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि कुछ विशेष लोगों में कुछ विशेष वरदान हो और अन्य लोगों में अन्य वरदान हो। अव्यक्तिक शक्तियों में योजनाएं और अभिलाषाएं नहीं होती, केवल व्यक्तियों में होती हैं। अतः पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति होना अवश्य है। पवित्र आत्मा में बुद्धि का चरित्र भी पाया जाता है, जिसके द्वारा इसमें ज्ञान एवं दूसरों को शिक्षा देने की योग्यता भी पाई जाती है। वो इस बुद्धि को कई रूपों में अभिव्यक्त करता है, जैसे कि परमेश्वर के मान को खोजने और जानने में, जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों 2:10-12 और उसमें अपना स्वयं का मन है ये बात हम रोमियो 8:27 में पढ़ते हैं। वो बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 12:8 में, और वो शिक्षा देता है लूका 12:12 में। स्वयं यीशु ने आत्मा की बुद्धि के विषय में यूहन्ना 14:26 में बात की थी। सुने उसने वहां प्रेरितों से क्या कहा था। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अव्यक्तिक शक्तियां सोचती, जानती और सिखाती नहीं है। अतः बुद्धि का चरित्र प्रमाणित करता है कि आत्मा एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा में भावनाएं, आंतरिक संवेदनाएं और स्नेह पाए जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति वो दूसरे लोगों और घटनाओं के प्रत्युत्तर में करता है। उसके अन्य व्यक्तिगत चरित्रों के समान उसकी भावनाएं प्रमाणित करती हैं कि वो एक व्यक्ति है, न कि मात्र एक शक्ति। उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा के प्रेम का उल्लेख रोमियो 15:30 में किया गया है। उसके आनंद के विषय में पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 में कहा गया है। और सुने किस प्रकार इफिसियों 4:30 में उसके शोक के बारे में कहा गया है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यह सच्चाई है कि पवित्र आत्मा में शोक जैसी भावनाएं पाई जाती हैं, दर्शाता है कि वो एक सच्चा व्यक्तित्व है। इससे बढ़कर आत्मा में वो चरित्र पाया जाता है जिसे हम माध्यम कह सकते हैं। उसमें इच्छा अर्थात योजना बनाने, उसे अपने ही अनुसार करने की योग्यता पाई जाती है, और ये उसे अनेक कार्यों को करने के योग्य बनाता है जो केवल व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना 15:26 और रोमियो 8:16 में साक्षी देता है। फिलिपियों 2:1 में वो हमारे साथ संगति करता है, और प्रेरितों के काम अध्याय 8:29-13:2 में बात करता है और आज्ञा देता है। एक उदाहरण के तौर पर रोमियो 8:26 से 27 में पाए जाने वाले शब्दों को सुने। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये सच्चाई है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए विनती करता है। ये उसके व्यक्तित्व का एक अन्य प्रमाण है। आव्यक्तिक शक्तियां और बल सच्चाई से आहें भरता हुआ विनती नहीं करता, केवल व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। चार्ल्स स्पर्जन 1834 से 1892 तक के जीवन काल में रहने वाला महान बैप्टिस्ट प्रचारक रोमियो 8:26 से 27 पर आधारित अपने संदेश पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में ये कहता है। सुने उसने क्या कहा। पवित्र आत्मा हमें हमारे शरीरों और मनों की दुर्बलताओं को सहन करने में सहायता करता है। वो हमें हमारे क्रूस को उठाने में सहायता करता है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक तनाव या आत्मिक संघर्ष या निंदा या गरीबी या सताव। वो हमारी कमजोरियों में सहायता करता है और ईश्वरीय सामर्थ्य रखने वाले इस सहायक के साथ होने पर हमें परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त होगा। उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध की जाएगी।
ये जानना उत्साहपूर्ण है कि कोई मेरे अंदर कार्य करता है, वो मेरे से बहुत अधिक सामर्थी है, और मैं कभी असहाय या गुलामी में महसूस करूं, वो केवल भावनाओं की बात है, वो सच्चाई नहीं है। परमेश्वर के सर्वसामर्थी पवित्र आत्मा मुझे मसीह के स्वरूप में बनाने हेतु कार्य में लगा हुआ है। कितना बड़ा प्रोत्साहन है ये। इसका अर्थ है कि मैं सदैव जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, कि चाहे मैं अपनी असफलताओं को लोगों से छिपा लूं, परंतु उसके समक्ष कोई गुप्त पाप नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा निर्मल है। निश्चिततः एक पासवान के रूप में मैं उस संतुलन को बनाए रखना चाहता हूं जब मैं पाप से संघर्ष कर रहे लोगों को परामर्श देता हूं। आशा रहित ना रहें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, और मसीह में भरोसा रखें और स्थिर बने रहें, और कभी उदासीन ना रहें, क्योंकि वही पवित्र आत्मा आप में रहता है और कार्य करता है।
अब जब हमने देख लिया है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के व्यक्तिगत चरित्र उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, तो हम त्रिएकता में ही पिता और पुत्र से अलग व्यक्तित्व के रूप में उसकी भिन्नता पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें ये बात स्वीकार करने के साथ आरंभ करना चाहिए कि बाइबल में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जहां आत्मा और त्रिएकता के अन्य व्यक्तित्वों के मध्य भिन्नता स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर गलतियों 4:6 में पवित्र आत्मा की पहचान परमेश्वर के पुत्र के आत्मा के रूप में की गई है, और मत्ती 10:20 में उसे पिता के आत्मा के रूप में पहचाना गया है। उसके कई और नाम भी हैं जो भिन्नता की अपेक्षा त्रिएकता के अन्य सदस्यों के साथ उसके संबंध को दर्शाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के अनुच्छेद प्रारंभिक कलिसिया में काफी वाद विवाद के स्रोत थे, फिर भी ये निकट संबंध हमें चकित नहीं करने चाहिए। आखिरकार त्रिएकता के तीनों व्यक्तित्व मिलकर एक परमेश्वर हैं। अतः पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र के आत्मा के रूप में सोचना और इसके साथ साथ इस बात पर बल देना भी कि वो उनसे पूर्ण रूप से भिन्न व्यक्तित्व है, बिल्कुल सही अर्थ को दर्शाता है। आत्मा और त्रिएकता के अन्य व्यक्तित्वों के बीच भिन्नताओं को दर्शाने का एक तरीका पवित्र शास्त्र के उन अनुच्छेदों पर ध्यान देना है जो उनके बीच वार्तालाप को दर्शाते हुए उनमें पाई जाने वाली भिन्नताओं पर बल देते हैं। ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जो इन भिन्नताओं को दर्शाते हैं, परंतु दो अनुच्छेद इस बात को दर्शाने में पर्याप्त होंगे कि आत्मा पिता और पुत्र से भिन्न है। पहला, यूहन्ना 16:7 में यीशु के शब्दों पर ध्यान दें। तब भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इस घटना में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तब तक नहीं आएगा जब तक पुत्र को भेजा नहीं जाएगा। स्पष्टतः उसने ये कहते हुए स्वयं को आत्मा से अलग बताया कि दूसरा आने से पहले पहला चला जाता है। प्रत्येक की अपनी नियुक्त भूमिका है, और आत्मा की भूमिका तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पुत्र का पृथ्वी पर का कार्य समाप्त ना हो जाए और वह स्वर्ग में ना चढ़ जाए। ये स्पष्ट करता है कि आत्मा पुत्र से भिन्न है। इसी प्रकार आत्मा उन कार्यों को भी करता है जब पिता से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर हमारे सहायक होने की उसकी भूमिका के रूप में पवित्र आत्मा हमारी सुरक्षा का अभिवक्ता है, परमेश्वर के समक्ष हमारे विषय को रखने के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं में सहायता करता है।
साधारण तौर पर आत्मा का कार्य मसीह के कार्य को लागू करना है। मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान दिया है। आत्मा का कार्य है कि वो उसके कार्य को ले और हमारे हृदय पर लागू करे, और इसलिए हमें ये दोनों चाहिए। मेरा मतलब है कि यदि हमारा हृदयों में इसे लागू करने के लिए आत्मा ना हो तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। इसलिए आत्मा आता है और हमें नया जन्म प्रदान करता है। आत्मा हमें पवित्र बनाता है, जिसे पवित्रीकरण कहते हैं, और आत्मा नियमित रूप से हमें हमारे जीवन में वरदान और आशीष प्रदान करता है। अतः आत्मा का कार्य काफी अनिवार्य है।
उदाहरण के तौर पर रोमियो 8:26-27 में पौलुस ने इन शब्दों को लिखा, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब पौलुस ने सिखाया कि पवित्र आत्मा पिता के समक्ष हमारे लिए विनती करता है, तो उसने दर्शाया कि वे भिन्न व्यक्तित्व हैं, एक विनती करता है और दूसरा विनती को सुनता है।
वो पिता के समक्ष विनती करता है, वो हमारे हृदय में बात करता है, और जब हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, और वो हमारे भीतर आहें भरता है, जैसे पौलुस कहता है, जिससे हम परमेश्वर से वे बातें कहते हैं जो हमें कहनी भी नहीं आती। हम कह सकते हैं कि प्रार्थना करने के नियम पिता से पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रार्थना करना है, और फिर भी हम ऐसे अनुग्रह और स्वतंत्रता के धर्म के सदस्य हैं कि परमेश्वर की अखंडता और हमारी प्रार्थनाओं की व्यवस्थित राह से कोई समझौता किए बिना भी पवित्र आत्मा को सीधे ही संबोधित किया जा सकता है।
पवित्र आत्मा के प्रति ये प्रार्थना, जिसे प्रायः कलिसिया अगवे अगस्तीन के साथ जोड़ा जाता है, जिसका जीवन काल 354-430 ईस्वी तक का था, हमारी अपनी प्रार्थनाओं के लिए एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। मुझ में श्वास भर हे पवित्र आत्मा, कि मेरे सब विचार पवित्र हो जाएं। मुझ में कार्य कर हे पवित्र आत्मा, कि मेरे कार्य भी पवित्र हो जाएं। मुझे आकर्षित कर हे पवित्र आत्मा, कि मैं जो पवित्र है उसी से प्रीति रखूं। मुझे सामर्थ्य दे हे पवित्र आत्मा, कि जो पवित्र है उसकी रक्षा कर सकूं। तब मेरी रखवाली कर हे पवित्र आत्मा, कि मैं सदैव पवित्र बना रहूं। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के विषय में उसके व्यक्तिगत चरित्रों एवं पिता और पुत्र से उसकी भिन्नता के आधार पर बात करने के बाद, आइए त्रियकता के दूसरे व्यक्तित्वों के साथ उसके संबंध पर ध्यान दें। जिस प्रकार हमने इन सब अध्यायों में उल्लेख किया है, त्रियेक्ता के व्यक्तित्वों के बीच संबंध का पारंपरिक रूप से दो दृष्टिकोणों से वर्णन किया जाता रहा है। विशेषकर धर्म विज्ञानियों ने सत्तामूलक त्रियेक्ता और विधानीय त्रियेक्ता के बारे में बात की है। ये दोनों एक ही त्रियेक्ता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण हैं, परंतु वे इन तीन ईश्वरीय व्यक्तित्वों के बीच संबंध के भिन्न पहलुओं पर बल देते हैं। जब हम सत्तामूलक त्रियेक्ता के बारे में बात करते हैं तो हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ सामर्थ्य और महिमा में एक समान है। परमेश्वर के ये तीनों व्यक्तित्व अनश्वर, अनंत और अपरिवर्तनीय हैं और प्रत्येक में समान मूलभूत ईश्वरीय चरित्र जैसे बुद्धि, सामर्थ्य, पवित्रता, न्याय, भलाई और सत्य पाए जाते हैं। और जब हम विधानीय त्रियेकता की बात करते हैं तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के व्यक्तित्व परस्पर वार्तालाप करते हैं। इस दृष्टिकोण से परमेश्वरत्व के प्रत्येक व्यक्तित्व में भिन्न उत्तरदायित्व, भिन्न अधिकार और भिन्न भूमिका पाई जाती है। आत्मा का अधिकार पिता और पुत्र के उच्चतर अधिकार के अधीन होता है और आत्मा की भूमिका विशालतः उनके निर्देशों को पूरा करना और उन्हें महिमा प्रदान करना होता है।
जहाँ परमेश्वर है वहाँ आत्मा भी है। उसका आत्मा उसकी उपस्थिति और कार्य दोनों को दर्शाता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी सृष्टि से संबंध बनाता है तो पवित्र आत्मा के बिना उसका वर्णन करना असंभव है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की विधानीय देखभाल और प्रेम का दूत है।
मसीही धर्म विज्ञान में सत्तामूलक त्रियेकता और विधानीय त्रियेकता दोनों में पवित्र आत्मा को तीसरा व्यक्तित्व कहा जाता है। वो सत्तामूलक त्रियेकता का तीसरा व्यक्तित्व है क्योंकि वह पिता के श्वास द्वारा निकला है जो पहला व्यक्तित्व है और पुत्र के द्वारा जो दूसरा व्यक्तित्व है। अब हमें ये कहने के लिए रुकना चाहिए कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी की कलीसियाएं सिखाती हैं कि पवित्र आत्मा केवल पिता के श्वास के द्वारा निकला है, पुत्र के द्वारा नहीं। शिक्षा में यह भिन्नता 1054 ईस्वी में पूर्वी और पश्चिमी कलीसियाओं में हुए विभाजन जो आज भी पाया जाता है के पीछे जो कारण था उसका हिस्सा थी। निसंदेह क्योंकि प्रेरितों के विश्वास कथन की रचना इस विवाद से पहले हो गई थी, इसलिए इसमें पूर्व और पश्चिम के बीच पाई जाने वाली इस सहमति को संबोधित नहीं किया गया है और कलीसिया की दोनों शाखाएं प्रेरितों के विश्वास कथन के सभी कथनों की पुष्टि करती हैं। विधानीय त्रियेकता के संबंध में पवित्र आत्मा को तीसरा व्यक्तित्व कहा जाता है क्योंकि पिता और पुत्र दोनों के अधीन उसकी श्रेणी तीसरी है। पवित्र शास्त्र अनेक रूपों में उसके अधीनीकरण को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर उसे पिता और पुत्र के द्वारा भेजा या दिया गया है। पवित्र शास्त्र इस बात को लूका 11:13, यूहन्ना 14:26, 15:26 और प्रेरितों के काम 2:33 में इसे बताता है। और जब वो आता है तो उस कार्य को करने के द्वारा जो उसे पिता और पुत्र के द्वारा करने को भेजा गया है वो उनकी आज्ञा मानता है। हम इस बात को यूहन्ना 16:13, रोमियो 8:11 और पहला पत्रस 1:2 में पाते हैं। निसंदेह जब हम ये भी कहते हैं कि विधानीय त्रियेकता के दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा के पास सबसे नीची श्रेणी है तो इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है कि वह फिर भी पूर्ण परमेश्वर है और सृष्टि के प्रत्येक पहलू पर उसका संपूर्ण सर्वोच्च अधिकार है। इससे बढ़कर त्रियेकता में परस्पर भिन्नता का भाव भी पाया जाता है क्योंकि जो एक व्यक्तित्व करता है वे सब करते हैं। अतः पिता और पुत्र द्वारा पवित्र आत्मा के अधीनीकरण का अर्थ ये नहीं कि वो किसी प्रकार से उनसे निम्न है। वो नहीं है, अपने मूलभूत ईश्वरत्व में वो उनके समान है।
पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व मसीह धर्म विज्ञान का एक अनिवार्य भाग है, और जैसा हम देख चुके हैं हमारे पास इसकी पुष्टि करने के अनेक कारण हैं। पवित्र आत्मा में वे सब चरित्र पाए जाते हैं जो उसे एक भिन्न स्वचेतन व्यक्तित्व के रूप में दर्शाते हैं, और पिता एवं पुत्र के साथ उसके संबंध या वार्तालाप किसी संशय को नहीं छोड़ते कि वो एक जीवंत व्यक्तित्व है, न कि एक बुद्धिरहित शक्ति या बल। इस पारंपरिक धर्म शिक्षा में हम विश्वास रख सकते हैं और रखना भी चाहिए।
पवित्र आत्मा पर आधारित इस अध्याय में अब तक हमने प्रेरितों के विश्वास कथन द्वारा आत्मा के ईश्वरत्व और उसके पूर्ण व्यक्तित्व की पुष्टि पर ध्यान दिया है। इस समय हम हमारे तीसरे मुख्य शीर्षक, वो कार्य जो पवित्र आत्मा ने पूरे इतिहास में किया है और निरंतर कर रहा है, को संबोधित करने के लिए तैयार हैं।
आत्मा के कार्य की गहन समझ रखने का एक लाभ ये जानना है कि परमेश्वर हमारे अंदर बहुत ही व्यक्तिगत रूप में कार्य करता है। वो बटन नहीं दबाता है, वो हमारे पास आता है और बहुत ही व्यक्तिगत रूप से अंतर्क्रिया करता है। अतः वास्तव में आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे साथ हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमें वरदान और पवित्रता प्रदान करता है, और वो हमारे साथ अनेक रूपों में सम्मिलित हो जाता है। हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में वो हमें मसीही सद्गुणों के वरदान देता है। जैसे कि पौलुस गलातियों में कहता है, वो कलीसिया में सेवा के लिए अनेक वरदान देता है, और ये सब हमारे अंदर आत्मा के माध्यम से परमेश्वर का कार्य है।
यद्यपि प्रेरितों का विश्वास कथन स्पष्ट रूप से आत्मा के कार्य के विषय में वर्णन नहीं करता है, परंतु मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि पुष्टि करने के द्वारा विश्वास कथन ने मूल रूप से आत्मा के कार्य की कई धारणाओं को लागू किया है। आत्मा के कार्य का वर्णन करने के कई रूप हैं, परंतु हम इसके केवल चार पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, हम उसकी सृजनात्मक शक्ति पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम उसके पवित्र करने के कार्य को देखेंगे। तीसरा, हम उसके अनुग्रह के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। और चौथा, हम उस प्रकाशन का वर्णन करेंगे जो वो प्रदान करता है। आइए उसकी सृजनात्मक शक्ति के साथ आरंभ करें। सृजनात्मक शक्ति से हमारा अर्थ पवित्र आत्मा की नई वस्तुओं की रचना करने की क्षमता, और जो कुछ रचा गया है उस पर शासन करने और बदलने की क्षमता है।
जब आप बाइबल के उत्पत्ति के अध्याय 1 को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है। जब आप कुलुसियों अध्याय 1 की ओर मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि मसीह सृष्टि करता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा रचना करता है। आत्मा पुनः रचना करने में भी सम्मिलित है। पुनर्रचना करने का अर्थ वही है जो हृदय परिवर्तन के विषय में हम सोच सकते हैं। यह आत्मा ही है जो नया करता है। जब तक कोई आत्मा के द्वारा जन्म ना ले, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से नया करने में ही कार्यरत नहीं है, परंतु ब्रह्मांड को नया करने में भी कार्यरत है। अतः पौलुस रोमियो 8 में कहता है कि सृष्टि स्वयं भी प्रसव पीड़ा में कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और सब वस्तु के नया होने की प्रतीक्षा कर रही है, जो पवित्र आत्मा का कार्य है।
पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति के बारे में हमारी चर्चा उसकी गतिविधि के तीन भिन्न स्तरों पर ध्यान देगी। पहला, हम प्राकृतिक जगत में उसकी सृजनात्मक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम उन आत्मिक वरदानों पर ध्यान देंगे जो वो कलीसिया को प्रदान करता है। और तीसरा, हम हमारी मानवीय आत्माओं और हृदयों के व्यक्तिगत नवीनीकरण में उसकी भूमिका पर ध्यान देंगे। तो आइए हम इस बात के साथ आरंभ करें कि किस प्रकार प्राकृतिक जगत में उसकी सृजनात्मक शक्ति प्रदर्शित होती है। प्राकृतिक जगत में पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति को पहले बाइबल के आरंभिक पदों में देखा जा सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने उत्पत्ति अध्याय 1 के सृष्टि की रचना के लेख में आत्मा की भूमिका को देखा था। ये देखते हुए कि उसने शून्य से जगत की रचना करने में उसने ईश्वरीय सर्व सामर्थ्य का प्रयोग किया। हम इसी प्रकार के एक विचार को भजन 104:30 में देख सकते हैं, जहां भजनकार ने आत्मा को आरंभिक सृष्टि की रचना के सप्ताह के दौरान ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी और उसके सब प्राणियों की रचना करने के लिए भेजने हेतु प्रशंसा की। भजन 33:6 इस विचार को बताता है और अय्यूब 33:4 इसे विशेष रूप से मानव जाति की ओर बढ़ाता है। एक उदाहरण के रूप में भजन 104:30 के शब्दों को सुने। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। इस पद में भजनकार संपूर्ण सृष्टि की रचना जिस प्रकार हुई है उसके प्रति अपनी समझ को व्यक्त करता है और उसने इन सब को परमेश्वर के आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जोड़ा है। प्राकृतिक जगत में पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति को पवित्र शास्त्र में उसकी शक्ति से किए गए चमत्कारों में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम के निर्गमन 17:6 में उसने मूसा को चट्टान से पानी निकालने में योग्य बनाया और पहला राजा 17 में विधवा के आटे और दाल को बढ़ाया। नए नियम में मत्ती अध्याय 14 में उसने 5,000 लोगों को और मत्ती अध्याय 15 में 4,000 लोगों को भोजन करवाने हेतु यीशु को भोजन को बढ़ाने में सक्षम बनाया। उसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, जैसा कि हम रोमियो 8:11 में पढ़ते हैं, और उसने पौलुस के सभी चमत्कारों एवं सेवकाई में सामर्थ्य प्रदान की, जैसा हम रोमियो 15:18-19 में पढ़ते हैं। निसंदेह उसका महानतम चमत्कार देह धारण था, जिसमें उसने कुंवारी मरियम के गर्भ से यीशु को पैदा किया। लुका 1:35 में निहित यह चमत्कार प्रेरितों के विश्वास कथन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित पवित्र आत्मा का एकमात्र कार्य था। आज भी पवित्र आत्मा में रचना करने, नया करने और सृष्टि को उस अवस्था में लेकर आने जब परमेश्वर इसके लिए चाहता है की नाटकीय शक्ति पाई जाती है। वास्तव में उसके द्वारा संसार का नवीनीकरण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मनुष्य जाति के पाप में पतन के प्रभावों को पूरी तरह से उलट न दे। उत्पत्ति अध्याय 3 हमें बताता है कि जब आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष वाला प्रतिबंधित फल खाया तो परमेश्वर ने उन्हें श्रापित किया, और क्योंकि मानव जाति को संपूर्ण पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधियों के रूप में अधिकार दिया गया है, इसलिए आदम और हव्वा के श्राप ने संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित किया, भूमि तक को भी। उस समय से पवित्र आत्मा संसार में इसे पुनर्स्थापित करने और इसकी अंतिम अवस्था में लाने के लिए कार्य कर रहा है। और परिणाम नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगा, जिसे हम यशाया 65:17 और 66:22, दूसरा पत्रस 3:13 एवं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:1 में पढ़ते हैं। अब जब हमने प्राकृतिक जगत में पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति को देख लिया है तो हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि वो कलीसिया को आत्मिक वरदान प्रदान करने के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है। जब हम आत्मिक वरदानों की बात करते हैं तो हमारे मन में अप्राकृतिक उद्गम की वे क्षमताएं होती हैं जो पवित्र आत्मा कलीसिया के निर्माण के उद्देश्य के लिए लोगों को प्रदान करता है। आत्मा उन लोगों को नई क्षमताएं प्रदान करने के द्वारा या पहले से पाई जाने वाली क्षमताओं को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभाओं या अनुभव से भी अधिक बढ़ाने के द्वारा इन वरदानों की रचना करता है जिनके पास ये नहीं थे।
नए नियम में आत्मिक वरदान अप्राकृतिक रूप से दी गए विशेष विलक्षण क्षमताएं हैं। इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है कि वे प्रतिभाओं से बढ़कर हैं। वे अप्राकृतिक रूप से हर विश्वासी को दी गई हैं। प्रत्येक विश्वासी में आत्मिक वरदान पाए जाते हैं।
प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए वरदानों के प्रकारों की सूचियां रोमियो अध्याय 12, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और इफिसियो अध्याय 4 जैसे स्थानों में पाई जा सकती हैं। इनमें से कुछ वरदान प्राकृतिक प्रतिभाओं या सामान्य मानवीय क्षमताओं जैसे लगते हैं। ये वे क्षमताएं हैं जो किसी हद तक कलीसिया से बाहर के लोगों में भी पाई जाती हैं, केवल इसलिए कि उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। ऐसे वरदान जैसे बुद्धि, ज्ञान, सेवा, शिक्षण, प्रोत्साहन, उदारता, अगुवाईपन और दया। परंतु अन्य आत्मिक वरदानों में स्पष्टता प्रत्यक्ष अप्राकृतिक उद्गम पाया जाता है, जैसे चंगाई और चमत्कारी शक्तियां। और कुछ ऐसे वरदान भी हैं जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक के बीच संतत्यक पर कहीं पड़े रहते हैं, जैसे भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं में बोलना और आत्माओं को पहचानना। अब सभी मसीही सहमत होते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया को अप्राकृतिक वरदान प्रदान करता है, परंतु इस सामान्य सहमति में अनेक छोटे मोटे दृष्टिकोण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। कुछ कलीसियाएं अवसानवादी दावे को मानती हैं, ये विश्वास करते हुए कि आधुनिक युग में पवित्र आत्मा केवल वही वरदान प्रदान करता है जो प्राकृतिक प्रतिभाओं जैसे लगते हों। चमत्कारी वरदानों का बंद हो गया माना जाता है, शायद प्रेरितिक युग के बाद या वचन का कैनन बंद हो जाने के साथ। अन्य कलीसियाएं निरंतरवादी दावे को मानती हैं, वे मानती हैं कि पवित्र आत्मा आज भी वे सभी वरदान प्रदान करता है जो नए नियम में पाए जाते हैं। इस समूह में इस बात पर अनेक दृष्टिकोण पाए जाते हैं कि कौन से वरदान मसीही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों पक्षों के बीच में अनेक संतुलित दृष्टिकोण पाए जाते हैं। संतुलित कलीसियाएं विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा आज भी जब चाहे तब चमत्कारी वरदान प्रदान कर सकता है, परंतु वे इस बात पर बल नहीं देते कि आत्मा को सदैव हर प्रकार का वरदान कलीसिया को देना जरूरी है। ये कलीसियाएं पवित्र आत्मा के किसी भी रूप में और किसी भी समय में कार्य करने की स्वतंत्रता पर बल देती हैं। परंतु एक बात जो इन सभी समूहों में पाई जाती है वो ये धारणा है कि पवित्र आत्मा कलीसिया के लाभ के लिए अपने लोगों को कम से कम कुछ वरदान तो देता ही है। आत्मिक वरदान परमेश्वर की सामर्थ्य हैं और उनका प्रयोग उसके लोगों के लिए संपूर्ण रीति से होना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत अभिलाषाओं की पूर्ति या व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है। इसकी अपेक्षा उन्हें सेवकाई के लिए कलीसिया को सामर्थी बनाने और मसीह में परिपक्व बनने के लिए दिया गया है। हम इस बात को रोमियो 12:4-5, पहला कुरिन्थियों 12:7 और इफिसियों 4:7-16 में देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में पहला कुरिन्थियों 12:7 में पौलुस ने जो लिखा है उसे सुने। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जिस प्रकार पौलुस ने यह दर्शाया है, आत्मिक वरदान कलीसिया के लिए दिए जाते हैं। वरदान प्राप्त लोग उनके अपने वरदानों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वरदान का मुख्य लक्ष्य और केंद्र कलीसिया को लाभ प्रदान करना है। वे सामर्थ्य के सृजनात्मक कार्य हैं जिन्हें पवित्र आत्मा अपनी संपूर्ण कलीसिया के विकास के लिए प्रयोग करता है।
आत्मिक वरदानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम जानते हैं वो ये है कि उनको विकसित किया जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए और कलीसिया अर्थात मसीह के देह में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आत्मिक वरदान व्यक्ति विशेष को इसलिए नहीं दिए जाते कि वो आनंद करें और अकेला उनसे लाभ प्राप्त करें। उन्हें लोगों के समूह अर्थात
यीशु मसीह की कलीसिया के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। आत्मा के द्वारा दिए गए आत्मिक वरदान कलीसिया की उन्नति, मसीह सेवकाई करने और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए हैं। हमारे समय में जो विशेष महत्व हम देते हैं, विशेषकर अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने के करिश्माए विषय, वास्तव में उन्हें पवित्र शास्त्र में हम कम महत्व के रूप में पाते हैं। हम उस प्रकार से आत्मिक वरदानों पर ध्यान देना चाहते हैं जैसे नया नियम देता है, जो हमें दिखाता है कि नई वाचा का युग प्रारंभ हो चुका है हमारे अंदर और सामूहिक रूप से इसके समुदाय में आत्मा का व्यक्तिगत कार्य, जो संसार में व्यक्तिगत एवं सांसारिक रूप में सेवकाय का कार्य करता है। ये महत्व है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना है। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो व्यक्तिगत एवं कलीसिया के सामूहिक जीवन में उन्हें कार्यरत होते देखना है।
पवित्र आत्मा की इस समझ के साथ कि वो किस प्रकार प्राकृतिक संसार में और कलीसिया को आत्मिक वरदान प्रदान करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, आइए अब देखें कि किस प्रकार उसकी सामर्थ्य प्रत्येक विश्वासी की आत्मा और उसके हृदय के व्यक्तिगत नवीनीकरण में प्रकट होती है। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि मनुष्य आत्मिक मृत्यु की दशा में जन्म लेते हैं। जैसे रोमियो 5:12-19 दर्शाता है, हम आदम के पाप के दोषी हैं और उसके फलस्वरूप हम मृत्यु के अधीन हैं। इसलिए इस दुर्दशा से हमें बचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के समक्ष हमारी आत्माओं को जीवित करने के द्वारा हमारे अंदर नए जीवन की रचना करता है। बाइबल इस नए जीवन के बारे में नया करने और नए जन्म लेने के रूप में बात करती है। इस नए जन्म पाने को यूहन्ना 3:3-8, तीतुस 3:5, पहला यूहन्ना 5:1-18 एवं कई अन्य स्थानों में पढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर तीतुस 3:5 में पौलुस के शब्दों को सुने। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा उसने हमारा उद्धार किया। नए हो जाने के पश्चात पवित्र आत्मा हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को बदलने के लिए हमारे अंदर कार्य करता रहता है, ताकि हमें ऐसे लोग बना दे जो प्रभु से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को माने। नए नियम इस बारे में रोमियो 8:1-16, पहला कुरिन्थियों 12:3, गलातियों 5:16-25 और फिलिपियों 2:13 में पढ़ते हैं। शायद पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी सामर्थ्य के बारे में सबसे प्रसिद्ध चर्चा उस फल के विषय में पौलुस का वर्णन है जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन उत्पन्न करता है। सुने पौलुस ने गलातियों 5:22-27 में क्या लिखा है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमारे चरित्र में ये सब परिवर्तन पवित्र आत्मा की सक्रिय सृजनात्मक शक्ति का परिणाम होते हैं जब वो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढालता है। और निसंदेह अंतिम दिन पवित्र आत्मा अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग सभी विश्वास योग्य मसीहियों की शारीरिक देह को पुनर्जीवित करने में करेगा और हमें जैसे यीशु के पास है वैसे ही सिद्ध अनश्वर देह प्रदान करेगा। सुने इसके बारे में पौलुस ने रोमियो 8:23 में क्या कहा है। हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। जब पौलुस ने कहा कि मसीह के अनुयायियों के पास आत्मा के पहले फल हैं तो उसने पुराने नियम की उस प्रक्रिया से अपनी भाषा शैली को लिया जिसमें वर्ष भर की संपूर्ण फसल के प्रतिनिधि के रूप में पहली फसल से भेंटें लाई जाती थीं। उसी प्रकार से विश्वासियों में पवित्र आत्मा का वर्तमान कार्य आने वाली उस महान बात के पहले फल हैं। पवित्र आत्मा का कार्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वह हमारे श्राप और नश्वरता को दूर करके और पाप रहित पूर्व अवस्था में पुनर्स्थापित करके पूर्ण रूप से हमारी पुनः रचना न कर दे। अब तक पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा को नया जीवन दिया है, परंतु अंत में वह हमारी देहों की भी पुनः रचना करेगा। अब जब हमने पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति के कार्यों को देख लिया है, तो अब हमें पवित्रीकरण के उसके कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों और वस्तुओं को पवित्र बनाने के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। यही वो कार्य है जो आत्मा लोगों और वस्तुओं को परमेश्वर के कार्य के लिए अलग करने, उनको शुद्ध करने और उसकी अनावृत महिमा के निकट आने के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने में करता है। कई रूपों में ये विचार नवीनीकरण के तथ्य से संबंधित हैं, जिसके बारे में हमने इस अध्याय के पिछले भाग में देखा था। बाइबल प्रायः कहती है कि कलीसिया पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सेवकाई के द्वारा पवित्र होती है या की जाती है। हम इस विचार को रोमियो 15:16, पहला कुरिन्थियो 6:11, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और पहला पत्रस 1:1-2 जैसे स्थानों में पाते हैं। सुने किस प्रकार पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में पवित्र आत्मा के बारे में बात की है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। पुराने नियम में यहूदी मंदिर परमेश्वर का पृथ्वी पर निवास स्थान था, जहां उसकी विशेष उपस्थिति रहती थी। वो पृथ्वी पर उसका घर था, जैसे सुलेमान ने दूसरा इतिहास 6:1 में इसके बारे में घोषणा की थी। परंतु नए नियम में परमेश्वर मंदिर में नहीं रहा। इसकी अपेक्षा पवित्र आत्मा ने कलीसिया को नए मंदिर के रूप में पवित्र किया। इसी विचार का उल्लेख स्पष्ट रूप से इफिसियों 2:22 में पाया जाता है और पवित्र शास्त्र के अन्य भागों में भी इसे देखा जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को भी उनके अंदर निवास करने के द्वारा उन्हें पवित्र करता है। ये वही विचार है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के हृदयों में निवास करता है। इस वास करने का उल्लेख पवित्र शास्त्र के कई स्थानों में पाया जाता है, जैसे रोमियो 8:9-16, पहला कुरिन्थियों 6:19, दूसरा तिमुथियुस 1:14 और याकूब 4:5।
पवित्र आत्मा का वास करना विश्वासी के लिए आवश्यक वास्तविकता है। जब परमेश्वर मसीहों को मसीह में नए प्राणी बनाता है, तो पवित्र आत्मा उन पर अधिकार ले लेता है। आवश्यक है कि हम उस पर आश्रित रहे, नहीं तो हम शरीर में ही जीवित रहेंगे। हमें आत्मा में जीने और शरीर में जीने के बीच अंतर बता पाने में सक्षम होना है, क्योंकि आत्मा में जीना हमें उस प्रकार से मसीह को महिमा देने में सक्षम बनाता है जैसा वो हमसे चाहता है।
इस निवास करने के कई परिणाम होते हैं। कुछ की सूची बनाए तो ये हमें पाप से शुद्ध करता है, परमेश्वर के लिए हमें अलग करता है और हम हमारे हृदयों और मनों में आत्मा के प्रभाव का आनंद और लाभ प्राप्त करते हैं। सुने किस प्रकार पौलुस ने इन बातों को पहला कुरिन्थियों 6:9-11 में लिखा है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र आत्मा के पवित्र करने के कार्य के माध्यम से विश्वासियों को शुद्ध किया गया है और परमेश्वर के लिए उन्हें अलग किया गया है, ताकि वे दुष्टों के साथ ना गिने जाएं।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कितनी विशेष बात है कि स्वयं परमेश्वर आपके भीतर वास करता है? ब्रह्मांड का रचियता आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने शेष अनंतता के लिए आपको अपने साथ जोड़ लिया है। आप उसके अनुमोदन के किनारे पर नहीं झूम रहे हो, आप उसके हृदय की गहराई में छिपे हुए हो, और यह रिश्ता आपको पाप के विरुद्ध मजबूत करता है। यह आपको परीक्षा में पड़ने के विरुद्ध संघर्ष करने में और परमेश्वर के पसंद आने वाले तरीकों में जीने में सहायता करता है। और जब आप पाप करते हैं तो ये कितने भी बुरे क्यों ना हो, फिर भी आप परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होते हैं। आप फिर भी उसके साथ संगति करने, उसकी आराधना करने, निसंदेह उससे क्षमा मांगने और पाने के लिए उपयुक्त होते हैं।
अब तक हमने पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति और उसके पवित्रीकरण के कार्य पर चर्चा की है। अब हम उन भिन्न प्रकारों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा वो ईश्वरीय अनुग्रह का संचालन करता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह के तीन प्रकारों के प्रबंधन की बात करेंगे, सामान्य अनुग्रह, वाचा का अनुग्रह और उद्धार रूपी अनुग्रह। आइए सामान्य अनुग्रह के साथ आरंभ करें। सामान्य अनुग्रह वो धैर्य है जो परमेश्वर दिखाता है, और वे उपकार हैं जो संपूर्ण मानव जाति को वो प्रदान करता है। पवित्र आत्मा सभी लोगों को एक समान सामान्य अनुग्रह प्रदान नहीं करता है। इसकी अपेक्षा वो अपनी योजनाओं और अभिलाषाओं के अनुसार यहां वहां प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर सामान्य अनुग्रह को इस प्रकार देखा जाता है कि पवित्र आत्मा संसार में पाप को रोकता है। पतित अविश्वासी पाप के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसा पौलुस ने रोमियो 8:1-8 में सिखाया था। वे स्वभाव से ही परमेश्वर के विरोधी होते हैं और वे पाप से प्रेम करते हैं। परंतु जिस प्रकार रोमियो 7:8 में पौलुस ने सिखाया, पवित्र आत्मा संसार में पाप के विरुद्ध लड़ता है। ये उसी समान है जिस प्रकार वो विश्वासियों को नया करने के बाद उनमें कार्य करता है। यद्यपि वो अविश्वासियों को इतनी बड़ी आशीष नहीं देता है, परंतु ये भी सत्य है कि वो उन्हें रोकता है ताकि वे उतना अधिक पाप ना कर सकें जितना वे करने में सक्षम हैं। सामान्य अनुग्रह का अन्य पहलू जो संसार में प्रायः देखा जा सकता है, वो ज्ञान है जो अविश्वासी प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के द्वारा जो अच्छे कार्य वे कर सकते हैं। अविश्वासी अनेक बहुमूल्य सत्यों को सीख सकते हैं जिनका प्रयोग वे कलीसिया और इसके विश्वासियों और उनके साथ साथ शेष मानव जाति को लाभ पहुंचाने में करते हैं। और जब कभी भी कोई किसी उपयोगी बात को पाता है तो वो ज्ञान पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रहकारी वरदान होता है। जॉन कल्विन, प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट सुधारवादी जिसका जीवन काल 1509 से 1564 ईस्वी तक का था, ने अपनी कृति इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन के दूसरी पुस्तक के दूसरे अध्याय के 15वें और 16वें खंडों में पवित्र आत्मा के ज्ञान के सामान्य वरदानों का वर्णन किया था। सुने उसने वहां क्या लिखा था। जब कभी भी हम इन विषयों को संसारिक लेखकों की कृतियों में पाते हैं तो सत्य की प्रशंसनीय ज्योति जो उनमें चमकती है हमें ये सिखाए कि मनुष्य का मन अपनी संपूर्णता से पतित एवं भटका होने पर भी परमेश्वर के उत्कृष्ट वरदानों से ढका और विभूषित है। यदि हम परमेश्वर के आत्मा को सत्य के सोते के रूप में मानते हैं तो जब तक हम परमेश्वर के आत्मा का अनादर करना ना चाहें तब तक ना तो स्वयं सत्य को ठुकराएंगे और ना ही उसको तुच्छ जानेंगे जहां भी ये प्रकट हो। परंतु यदि परमेश्वर ने चाहा है कि हम भौतिक शास्त्र, भाषा शास्त्र, गणित और अन्य संकायों में परमेश्वर को ना जानने वाले लोगों के कार्यों से सहायता प्राप्त करें तो हमें उनके सहयोग को प्राप्त कर लेना चाहिए। पवित्र शास्त्र के कई स्थानों में हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किए गए दूसरे प्रकार के अनुग्रह को पाते हैं, जिसे कभी कभी वाचा का अनुग्रह कहा जाता है। वाचा का अनुग्रह परमेश्वर का वो धैर्य और वे उपकार हैं जो परमेश्वर उन सबको देता है जो उसकी वाचा के लोगों का हिस्सा होते हैं, चाहे वे सच्चे विश्वासी ना भी हों। पुराने नियम में इसराइल परमेश्वर के वाचा के लोग थे, क्योंकि पूरा राष्ट्र परमेश्वर की अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ बांधी गई विशेष वाचाओं के अधीन था। नए नियम में परमेश्वर की वाचा के लोग दृष्टिगोचर कलीसिया हैं, जो कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वे सच्चे विश्वासी ना भी हों। परमेश्वर का वाचा का अनुग्रह सामान्य अनुग्रह से भी अधिक भरपूर और धैर्यवान होता है। उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर प्राचीन इसराइल के प्रति बहुत ही धैर्यवान और दयालु था, चाहे इसराइल उसके प्रति प्रायः अविश्वास योग्य रहा एवं उसके विरुद्ध बहुत पाप किए। इसराइल के साथ परमेश्वर की वाचा के कारण उसने उन्हें संपूर्ण राष्ट्र के रूप में नाश नहीं किया, बल्कि सदैव विश्वास योग्य बाकी बचे लोगों को बनाए रखा। पौलुस ने इसके बारे में रोमियो 11:1-5 में स्पष्ट रूप से बात की है। इससे बढ़कर परमेश्वर की वाचा के कारण प्राचीन इसराइल के अविश्वासियों ने उसकी आशीषें प्राप्त की थीं। शायद इसका सबसे उचित उदाहरण मिस्र से निर्गमन है। सुने, मूसा ने निर्गमन 2:23-25 में क्या लिखा था। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। ध्यान दें कि परमेश्वर इसराइल के बारे में क्यों चिंतित था और उसे क्यों बचाया। ये इसलिए नहीं कि वे उसके प्रति विश्वास योग्य थे, परंतु इसलिए कि वे उस वाचा में सम्मिलित थे जो उसने उनके पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी। वही बात आज कलीसिया में भी लागू होती है। उदाहरण के तौर पर, प्रत्येक वो व्यक्ति जो कलीसिया का भाग है, उसके समक्ष नियमित रूप से सुसमाचार प्रस्तुत किया जाता है और पश्चाताप करने एवं उद्धार पाने का अवसर प्रदान किया जाता है, और वे उन आशीषों में भी सहभागी होते हैं जो परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया को प्रदान करता है। वास्तव में कलीसिया में अविश्वासी कलीसिया के आत्मिक वरदानों से भी लाभ प्राप्त करते हैं, जैसा हम इब्रानियों 6:4-6 में पढ़ते हैं। इसीलिए इब्रानियों 10:29 कहता है कि कलीसिया के अविश्वासी अपनी अविश्वास योग्यता से अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं।
जब हम कलीसिया में जाते हैं तो वहां उद्धार पाए और उद्धार ना पाए दोनों प्रकार के लोग होते हैं। उद्धार ना पाए लोग, मैं कहूंगा, मसीहों की उपस्थिति में रहने से लाभ प्राप्त करते हैं। ये एक अच्छी बात है। परमेश्वर उससे क्या करेगा हम हमेशा कह नहीं सकते। जॉन केल्विन ने सामान्य अनुग्रह के बारे में बात की है। जॉन वेस्ली ने परमेश्वर के पूर्ववर्ती अनुग्रह के बारे में बात की। इसी प्रकार अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है इससे पहले कि वे चेतनापूर्वक यीशु मसीह में विश्वास को जाहिर करें। इसलिए मैं सोचता हूं कि वो अनुग्रह शायद दो प्रकार से कार्य करता है। पहला ये कि पाप हमें क्षति पहुंचाता है, और ये परमेश्वर के हृदय पर भी आघात करता है। और फिर जब पाप का बोध हमारे भीतर होना शुरू हो जाता है, तब हम आश्वस्त हो जाते हैं। जैसे कुछ धर्म विज्ञानी कहते हैं कि जीने का एक बेहतर मार्ग भी है, और इसलिए मेरा अनुमान है, खासकर उद्धार ना पाए व्यक्ति के लिए, कि ये उन श्रेष्ठ बिंदुओं से जीवन को देखने के अवसर प्राप्त करना है, ये विश्वास करते हुए कि जब वे ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करेगा। ये उन्हें परमेश्वर के विधान के द्वारा ऐसे संदर्भ में रखता है जिसमें वे सुसमाचार सुन सकते हैं, जिसमें वे सुसमाचार को क्रियान्वित होता देख सकते हैं, जिसमें वे लोगों के समूह की संगति में देख सकते हैं कि यीशु कैसा दिखता है, और इसलिए परमेश्वर की सर्वोच्चता में शायद ये किसी को उद्धार पाए बिना कलीसिया के जीवन में लाने का साधन है, ताकि वे सुसमाचार का प्रत्युत्तर दे सकें।
अंत में पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किया जाने वाला तीसरे प्रकार का अनुग्रह वो है जिसे कई धर्म विज्ञानी उद्धार रूपी अनुग्रह कहते हैं। उद्धार रूपी अनुग्रह मसीह के सिद्ध जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पुनरागमन के अनंत उपकारों को उन लोगों पर लागू करना है जो प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा से उद्धार रूपी अनुग्रह प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा द्वारा उद्धार रूपी अनुग्रह देने के फलस्वरूप जो आशीषें हमें मिलती हैं, वे यीशु के कार्य के आधार पर हमारे लिए पहले से ही सुरक्षित रखे हुए हैं, परंतु हम तब तक उनके लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा उनको हम पर लागू नहीं कर देता। इन आशीषों में सबसे स्पष्ट वे हैं जैसे नया कर देना, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं को नया जीवन प्रदान करता है ताकि हम नया जन्म प्राप्त करें। हम इसे यूहन्ना 3:5-8, रोमियो 8:2-11 और तीतुस 3:5 में पढ़ते हैं। पश्चाताप, पापों की क्षमा और धर्मी ठहराना भी उद्धार रूपी अनुग्रह हैं जो पवित्र आत्मा हम पर लागू करता है, जिसे हम जकरिया 2:10, पहला कुरिन्थियों 6:11 और तीतुस 3:5-8 में पाते हैं। नया नियम उद्धार को पवित्र आत्मा द्वारा हमें संपूर्ण बनाने के रूप में बताता है, जिसे हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और तीतुस 3:5 में देखते हैं। जब मसीही व्यक्तिगत उद्धार के बारे में बात करते हैं तो हम यीशु मसीह और उसके कार्यों पर ध्यान देते हैं, और निसंदेह ये अच्छा भी है, परंतु पवित्र आत्मा की भूमिका को पहचानना भी महत्वपूर्ण है।
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जो करता है उसकी समझ संपूर्ण मसीह जीवन की रचना करती है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है और इस बात को महसूस करने की कुंजी है कि मसीह के लिए जीने की अभिलाषा और शक्ति पवित्र आत्मा से आती है। वो वही है जो हमें परमेश्वर की बातों की भूख प्रदान करता है, कि हम परमेश्वर की बातों के लिए भूखे रहें, कि हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें। ये लोगों पर से काफी दबाव हटा देता है। सब मेरे कंधों पर ही है, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि क्या करना है, अब ये मुझे ही करना है। हाँ, हम पर जिम्मेवारियां होती है, परंतु हम ये स्वीकार करते हैं कि वो हमें अभिलाषा और शक्ति एवं विचार देता है। यह सब उसी के महिमा के लिए है।
त्रिएकता के अन्य व्यक्तित्वों से बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय होता है और ये निश्चित करता है कि हम क्षमा, आनंद, भलाई, सामर्थ्य, शांति और उद्धार की अन्य सभी आशीषें प्राप्त करें। इसलिए यदि हम ये सब प्राचुरता में पाना चाहते हैं तो हमें उसके उद्धार रूपी अनुग्रह के लिए उससे निवेदन करना चाहिए, और इससे बढ़कर हमें उसकी विश्वास योग्यता और दया के लिए आत्मा का सम्मान करना चाहिए। जो उद्धार रूपी अनुग्रह वो देता है, वो उसे हमारे आभार, हमारी प्रशंसा, हमारी आराधना और हमारे प्रेम के योग्य से भी बढ़कर बना देता है। अब जब हमने पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति, पवित्रीकरण और अनुग्रह के कार्यों की खोज कर ली है, तो हम प्रकाशन के उसके कार्यों को देखने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा को सामान्यतः त्रिएकता के ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है जो प्रकाशन, गवाही और ज्ञान का दूत है। हम इसे यूहन्ना 14:26, पहला कुरिन्थियो 2:4-10, इफिसियो 3:5 और अन्य स्थानों में देखते हैं। वास्तव में आत्मा और प्रकाशन का संबंध इतना गहरा है कि पवित्र आत्मा को विभिन्न जगहों पर सत्य का आत्मा कहा जाता है, जैसे यूहन्ना 14:17, 15:26 और 16:13 में। और हिंदी बाइबल के पहला यूहन्ना 5:7 में यूहन्ना यहां तक कहता है कि आत्मा सत्य है। इसी समान पौलुस इफिसियो 1:17 में आत्मा की भूमिका को यह कहते हुए दर्शाता है कि वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है। हम आत्मा के प्रकाशन के कार्य के तीन पहलुओं के बारे में बात करेंगे। पहला, हम सामान्य प्रकाशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम विशेष प्रकाशन पर ध्यान देंगे। और तीसरा, हम प्रज्वलित करने और आंतरिक अगुवाई पर ध्यान देंगे। आइए पहले सामान्य प्रकाशन पर चर्चा करें। संपूर्ण मानव जाति के समक्ष अपने अस्तित्व, प्रकृति, उपस्थिति, क्रियाओं और इच्छा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्राकृतिक जगत और इसकी क्रियाओं के प्रयोग करने को सामान्य प्रकाशन कहा जाता है। पवित्र शास्त्र सामान्य प्रकाशन के बारे में कई स्थानों पर बात करता है, जैसे भजन 8:19 एवं रोमियो अध्याय 1:2। उदाहरण के तौर पर रोमियो 1:20 सामान्य प्रकाशन के बारे में ये कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से ही उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। पवित्र शास्त्र प्रायः कहता है कि सामान्य प्रकाशन को प्रकृति में पवित्र आत्मा की सृजनात्मक शक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है। सृष्टि के कार्य में और रची गई वस्तुओं को बनाए रखने में ये सभी कार्य आत्मा की इच्छा और चरित्र से बहते हैं, इसलिए जब हम उनमें उसके हाथ को देखते हैं तो वे उसकी प्रकृति और अभिप्रायों को सिखाते हैं।
सामान्य प्रकाशन में पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सृष्टि का दूत है। वो वही है जो परमेश्वर के नियमों, जिन्हें हम प्राकृतिक नियम भी कहते हैं, को बनाए रखने में भी शामिल होता है, जिसके द्वारा हम हमारे हृदयों में उसके आंतरिक कार्यों के द्वारा यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जान लेते हैं। परंतु सामान्य प्रकाशन वो है जो परमेश्वर के सभी प्राणियों के लिए उपलब्ध रहता है। परमेश्वर हमें बताता है कि आकाशमंडल परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। हम सृष्टि में परमेश्वर के सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसकी भलाई के प्रदर्शन को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के इन प्रकाशनों को लेता है और शक्तिशाली रूपों में हमारे पास लेकर आता है। इसलिए हमें हमारे सृष्टिकर्ता के साथ सही संबंध बनाना है।
संसार में सामान्य प्रकाशन प्रदान करने के अतिरिक्त पवित्र आत्मा विशेष प्रकाशन भी प्रदान करता है, विशेषकर कलीसिया को। मनुष्य जाति की सीमित संख्या के समक्ष अपने अस्तित्व, प्रकृति, उपस्थिति, कार्यों और इच्छा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने अथवा अपने संदेश वाहकों का इस्तेमाल करने को विशेष प्रकाशन कहते हैं। पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र, भविष्यवाणियों, स्वप्नों, दर्शनों, स्वर्गदूतों और अन्य असाधारण माध्यमों के द्वारा विशेष प्रकाशन प्रदान किया है। विशेष प्रकाशन मुख्यतः विशेष लोगों या समूहों को दिया जाता है, विशेषकर उन्हें जो परमेश्वर के उद्धार की भेंट को स्वीकार करते हैं। पुराने नियम में विशेष प्रकाशन अधिकांश अब्राहम और उसके वंशजों को दिया जाता था, और नए नियम में ये कलीसिया को दिया गया। आत्मिक वरदानों के समान विशेष प्रकाशन परमेश्वर के सब लोगों के लाभ के लिए होता है, सबको विश्वास में लाने और बढ़ाने के लिए। पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया सबसे महानतम प्रकाशन स्वयं यीशु मसीह का देह धारण था। इब्रानियों अध्याय एक परमेश्वर के सभी प्रकाशनों में से हमारे प्रभु की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के रूप में प्रशंसा करता है, और आज भी पवित्र आत्मा प्रेरणा प्राप्त पवित्र शास्त्र के द्वारा निरंतर रूप से मसीह की ओर संकेत करता है, जिसमें सभी युगों से मसीह के शब्द पाए जाते हैं जो हमें उसके आधिकारिक नबियों और प्रेरितों से प्राप्त हुए हैं। पवित्र आत्मा के पवित्र शास्त्र के लेखक होने का उल्लेख मत्ती 22:43, मरकुस 12:36, प्रेरितों के काम 1:16 और 4:25, दूसरा तिमोथियुस 3:16-17 जैसे अनुच्छेदों में पाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में सुने पत्रस ने दूसरा पत्रस 1:20-21 में क्या लिखा है। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रेरितों के युग से ही आत्मा अब नए शास्त्रों को प्रेरणा नहीं देता है, परंतु जो विशेष प्रकाशन उसने पुराने और नए नियम में प्रदान किया है वो हर युग में मसीहियों के समक्ष उसकी इच्छा को निरंतर प्रकाशित करता रहता है। तीसरा, सामान्य प्रकाशन और विशेष प्रकाशन प्रदान करने के अतिरिक्त पवित्र आत्मा लोगों को प्रज्वलित या प्रकाशमान करने तथा आंतरिक अगुवाई देने के माध्यम से भी कार्य करता है।
दूसरा पत्रस 1:21 में हम पढ़ते हैं कि पुराना नियम के नबियों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से बातें की, जिसका आशाएं है कि कलीसिया को दिया गया पवित्र आत्मा हमें ये समझने के लिए ज्योतिर्मय करेगा जिसकी प्रेरणा उसने नबियों को दी थी। कोई नया प्रकाशन नहीं है, परंतु यदि हमें वर्तमान प्रकाशन को समझना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्योतिर्मय और शक्तिशाली बनना आवश्यक है।
प्रज्वलित या प्रकाशमान होना ज्ञान या समझ का ईश्वरीय वरदान है जो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक होता है, जैसे कि वो ज्ञान कि यीशु मसीहा है जो पत्रस ने मत्ती 16:17 में प्राप्त किया था, और आंतरिक अगुवाई ज्ञान या समझ का वो ईश्वरीय ज्ञान है जो मुख्यतः भावनात्मक या बोधपूर्ण होता है। इसमें हमारा विवेक और वो भाव शामिल होता है जिसके द्वारा परमेश्वर किसी से कोई विशेष कार्य करवाता है। प्रज्वलित करना और आंतरिक अगुवाई बाइबल में सदैव एक दूसरे से स्पष्टता भिन्न प्रतीत नहीं होते हैं। प्रायः पवित्र शास्त्र ऐसे रूपों में बात करता है जो समान रूप से दोनों पर लागू होते हैं। हम इस प्रकार के अनुच्छेद 1 कुरिन्थियों 2:9-16, इफिसियों 1:17, कुलुसियों 1:9 और 1 यूहन्ना 2:27 में पाते हैं। उदाहरण के तौर पर इफिसियों 1:17 में पौलुस ने इस प्रकार कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहां पौलुस ने पवित्र आत्मा को बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा कहा है। प्रज्वलित करने और आंतरिक अगुवाई करने की श्रेणियों के संबंध में हम शायद बुद्धि को आंतरिक अगुवाई और प्रकाशन को प्रज्वलित करने के रूप में देखने को ललायित हो सकते हैं, और यही बात शायद पौलुस के मन में थी। दूसरी ओर वो शायद उनके बीच स्पष्ट अंतर को दर्शाए बिना सामूहिक रूप से आत्मा के दोनों कार्यों को दर्शा रहा है।
We all of us need the illumination of the Spirit because we all of us are spiritually blind without it.
हम सबको आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता है क्योंकि हम सब इसके बिना आत्मिक रूप से अंधे हैं। हम आत्मिक रूप से इस प्रकार से अंधे हैं जिस प्रकार से चमगादड़ शारीरिक रूप से अंधे होते हैं। मेरा मतलब है कि वे सूर्य की ओर देख नहीं सकते, इसलिए जब सूर्य चमक रहा होता है तो वे गुफाओं की छत से उल्टे पांव लटके रहते हैं जहां वे दिन भर छिपे रहते हैं। वे तभी देख सकते हैं जब वे रात में बाहर निकलते हैं। हाँ, हम भी दिन में चमगादड़ों की अवस्था में रहते हैं। परमेश्वर की ज्योति चमक रही है, परंतु पाप ने हमारी आत्मिक क्षमता में असमंजस डालकर जो किया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की वास्तविकता और उसके वचन को समझ नहीं पाते हैं। हमें शायद ये अस्पष्ट समझ हो कि परमेश्वर वहां है, परंतु हम इस बात को समझना नहीं चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र का आदेश हमारे लिए है, पवित्र शास्त्र की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। प्रभु यीशु की पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाली प्रस्तुति, उस पर भरोसा करने और नए जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। नया नियम कहता है, मैं अब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 से उल्लेख कर रहा हूं, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, जो निसंदेह सृष्टि की रचना में पाया जाता है, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यही आत्मा का प्रकाश है, और जब वो प्रकाश हमें दिया जाता है तो हम मसीह को आत्मिक रूप से देखते हैं, हम उसकी वास्तविकता को देखते हैं, हम सुनते और महसूस करते हैं कि वो हमें अपने पास बुला रहा है।
प्रज्वलित करना और आंतरिक अगुवाई वे सामान्य साधन हैं जिन्हें पवित्र आत्मा अपने लोगों को उन सत्यों को सिखाने में प्रयोग करता है जो उसने प्रकाशित किए हैं। वैसे ही कम से कम तीन कार्य हैं जो हमारे जीवनों में हम उसकी सेवकाई से लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। पहला, हम स्वयं को बाइबल का अध्ययन करने के प्रति समर्पित कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा प्रायः हमारी समझ को अगुवाई प्रदान करेगा। दूसरा, हम स्वयं को प्रार्थना के प्रति समर्पित कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से निरंतर अगुवाई, बुद्धि, समझ और आज्ञा मानने की इच्छा मांगते हुए। और तीसरा, हम स्वयं को धर्मी और पवित्र जीवन जीने के प्रति लगा सकते हैं, उन सत्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हुए जो आत्मा हमें सिखाता है। प्रेरितों के विश्वास कथन के इस अध्याय में हमने पवित्र आत्मा की धर्म शिक्षा पर ध्यान दिया है। हमने विश्वास कथन और इसके बाइबल आधार के संबंध में आत्मा के ईश्वरत्व पर चर्चा की है। हमने उसके विशेषताओं के अनुसार और पिता और पुत्र के साथ उसके संबंध के प्रकाश में उसके व्यक्तित्व की खोज की है, और हमने उसकी सृजनात्मक शक्ति, पवित्रीकरण, अनुग्रह और प्रकाशन के कार्यों के बारे में बात भी की है।
पवित्र आत्मा की धर्म शिक्षा मसीहियों के लिए एक असीम सोता है। ये हमें त्रिएकता के तीसरे व्यक्तित्व के बारे में सिखाता है जो हर समय सहायता के लिए हमारा निकटतम स्रोत है। वो हमें उसकी ओर संकेत करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले मार्गों में जीने के लिए प्रेरित करने और शक्ति प्रदान करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, और यह हमें काफी आत्मविश्वास प्रदान करता है कि परमेश्वर सदैव इस संसार में गहन एवं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित है, उन सब के लाभ के लिए सदैव कार्य करते हुए जो अपना भरोसा उस पर रखते हैं।
Christ is only begotten Son, our Lord. suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe. It's what makes me what I am. I did not make it. Heaven, where he sits in God's mighty right hand. I believe that he's returning to judge the quick and the dead and the sons of men.